ਚਾਰ ਫਰਨੀਚਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਟਿਵ ਆਈਟਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੀਜਨੇਬਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਜ ਤੇ ਫਾਈਨੈਂਸਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ 74 ਡੈਵਨ ਰੋਡ ਜਾਂ 142 ਕੈਨੇਡੀ ਰੋਡ ਸਾਊਥ ਤੇ ਪਹੁੰਚੋ। ਦੋਨੋ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨੰਬਰ 9058747171।
सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
रेडियो भारत सुनने वाले सभी श्रोताओं को अरविंद भारद्वाज का नमस्कार। रेडियो भारत के आज के कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज 1 जून 2019 दिन शनिवार, तदनुसार विक्रमी संवत 2076 के ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी। समय सायंकाल के तकरीबन 1 मिनट हुआ चाहता है और अब से लगभग 1 घंटे तक आपका और हमारा साथ बना रहेगा। दोस्तों, रेडियो भारत के साप्ताहिक कार्यक्रम में हम बात करते हैं अपने प्यारे भारत की, अपने प्यारे हिंदुस्तान की, भारत के इतिहास की, भारत के वर्तमान और भविष्य की। कुछ गीत संगीत हुआ करता है और कुछ पूरे सप्ताह के विश्व के, भारत के और कनाडा के महत्वपूर्ण समाचारों और घटनाओं पर चर्चा होती है। आइए हमेशा की तरह इस कार्यक्रम का आरंभ एक बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ करते हैं। आवाज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर जी की है और लौट कर वापिस आते हैं इस खूबसूरत गीत के बाद।
मुझको लगता है डर मेरे।
साधना जी और देव आनंद के ऊपर फिल्माए इस बहुत ही खूबसूरत गीत के साथ इस प्रोग्राम का आगाज किया हमने। और आइए कुछ कमर्शियल्स ले लेते हैं। डीपी जैन सीपीए सीजीए 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से ज़्यादा फुल टाइम प्रैक्टिस है कनाडा में। एक्सपर्ट इन बिजनेस लोन्स, लाइन ऑफ क्रेडिट्स, कमर्शियल मॉर्गेजेस, बिजनेस कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी, कॉम्प्लेक्स कॉरपोरेट पर्सनल एंड बिजनेस टैक्सेस, कंपनी कॉरपोरेशन, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, CRA ऑडिट्स, HST, पेरोल मैटर्स एंड अकाउंटिंग। आप इन्हें कॉल कर सकते हैं 416-305-0080 पर। डीपी जैन सीपीए सीजीए, आप इन्हें किसी भी अकाउंटिंग की आवश्यकता के लिए 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं। आपके ऑटो, होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भरद्वाज। आप उन्हें 416-262-0414 पर कॉल कर सकते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं। अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए और कम्पिटिटिव कोट लीजिए। कोमल भरद्वाज 416-262-0414। डेनियल कॉन्डो अवेलेबल है GTA टीम रियलिटी के पास। आप एग्लिंटन और एरिन मिल्स पर अगर आप कॉन्डो देख रहे हैं तो इनके पास कॉन्डो अवेलेबल है। आप इन्हें 647-640-0555 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। GTA रियलिटी आपकी सेवा में उपस्थित है एक्सपीरियंस्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ। 650 स्क्वायर फीट का ये कॉन्डो 2 साल पुराना है, एक रूम प्लस डेन और बेस्ट इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। 2100-2200 का रेंट ऑलरेडी ये कॉन्डो दे रहा है, ऑलरेडी रेंटेड है और जो टेनेंट हैं दे वांट टू स्टे। आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं, एरिन मिल्स टाउन सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट एग्लिंटन और एरिन मिल्स पर डेनियल कॉन्डो 647-640-0555। पारस चोपड़ा मॉर्गेज इंटेलिजेंस से जुड़े हुए हैं, कमर्शियल और रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस के लिए एक्सपर्ट हैं। 647-680-1284 पर आप अच्छे रेट्स के लिए आप इनसे बात कर सकते हैं। मॉर्गेजेस आपको मालूम है आजकल स्ट्रेस टेस्ट होने के कारण काफ़ी मुश्किल है, पारस चोपड़ा जी आपके लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं। 647-680-1284 पर।
यार
आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल लेते हैं।
जहां था वही खड़ा है
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहां जाओ।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दौड़।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कनाडा वाइड फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888 647-699-888।
5000 पुराने हिंदी गानों का एक नया तोहफा, प्रेजेंटिंग सारेगामा कारवा प्रीमियम विद मोबाइल ऐप सपोर्ट एंड AM/FM रेडियो।
आने वाला पल जाने वाला है।
Dubai, contact Madha Malwa Doaba at 905-799-9400 and India Sajavat and Pooja Hut at 905-458-6808.
कनाडा आए हुए अरसा हो गया लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशन इमिग्रेशन जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनवे ड्राइव यूनिट 211 मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट का खुलासा हो चुका है और जो भी अटकलें थी वो, जैसा कि उन्होंने कहा था अपनी स्पीच में, ओपनिंग स्पीच में जब वो शपथ ले रहे थे कि अखबारों और सोशल मीडिया के ऊपर ना जाएं और मिनिस्टर्स के पोर्टफोलियो के ऊपर अटकलें मत लगाएं, बात ठीक वैसी ही निकली है। हालांकि कुछ व्हाट्सएप मैसेजेस चल रहे थे जिनके ऊपर पोर्टफोलियो डिस्कस किए गए थे और ऐसा कहा जा रहा था कि ये पोर्टफोलियो बदले नहीं जाएंगे और यही रहेंगे, लेकिन काफ़ी कुछ उलटफेर हुई है। और हम प्रोग्राम की शुरुआत में ही हम आपको बता दें कि जो पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स को दिए गए हैं वो बहुत कमाल के हैं। उम्मीद है कि ये मिनिस्ट्री जो है वो भारत को आगे ले जाने में सक्षम होगी। नरेंद्र मोदी खुद के पास एज ए प्राइम मिनिस्टर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवियंसेज एंड पेंशन रख रहे हैं, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी भी नरेंद्र मोदी के पास है, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस और सभी मुख्य पॉलिसी इश्यूज और सभी पोर्टफोलियो जो कि किसी मिनिस्टर को अलॉट नहीं किए गए हैं वो नरेंद्र मोदी के पास रहेंगे। अमित शाह को जो है वो गृह मंत्रालय दिया गया है और होम अफेयर्स भी उनके पास है, बड़ी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री दी गई है। और राजनाथ सिंह को मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस दी गई है, रक्षा मंत्रालय उनको दिया गया है। और होम मिनिस्ट्री के ऊपर स्पेशली जब हम बात करेंगे, हमारे जो दो गेस्ट उपस्थित हैं स्टूडियो में इस समय उनसे बात करेंगे, संजीव मलिक जी और राजीव रामपाल जी, उनसे बात करेंगे, तब हम खास करके अमित शाह की मिनिस्ट्री के ऊपर भी हम स्पेशल फोकस रखेंगे। नितिन गडकरी जी को रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे मंत्रालय उनके पास रिटेन रखा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस भी उनको दी गई है। सदानंद गौड़ा के पास केमिकल और फर्टिलाइजर हैं और निर्मल सीतारमन को जो रक्षा मंत्री थी पहले उनको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस दिया गया, पहली महिला मंत्री हैं जो फाइनेंशियल अफेयर्स जिनको हैंडल करने का मौका मिलेगा, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स निर्मला सीतारमन को दिया गया है, बड़ी महत्वपूर्ण मिनिस्ट्रीज हैं ये। रामविलास पासवान एनडीए के घटक दल उनको भी मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन उनके खाते में आया है। नरेंद्र सिंह तोमर को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और फार्मर्स वेलफेयर की। ये भी मैं आपको बताता चलूं कि पहला जो सिग्नेचर हुआ है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट का, जो पॉलिसी डिसाइड हुई है वो 6,000 रुपये जो है वो भारत के तकरीबन 18 करोड़ किसानों को हर साल मिलेंगे। सबसे पहला ये डिसीजन हुआ, जो उनका चुनावी वादा था वो पूरा किया गया है और ये मिनिस्ट्री और किसानों नरेंद्र सिंह तोमर को दी गई है, क्योंकि ये ग्रामीण तबके से ताल्लुक रखते हैं, उनको रूरल डेवलपमेंट भी दिया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज भी दी गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि भारत की जो अब जो गवर्नमेंट दोबारा आई है नरेंद्र मोदी की, इस बार गांवों के ऊपर और किसानों की हालत के ऊपर स्पेशल फोकस रहेगा, क्योंकि जैसा कि आपको मालूम है पिछले 5 वर्षों में और उससे पहले भी किसान गरीबी के कारण और लोन्स के कारण खुदकुशी करते रहे हैं, तो ये भारत की सरकार की पहली प्राथमिकता है जिस पर उन्होंने पहले दिन कार्यभार संभालते ही काम करना शुरू कर दिया है। रविशंकर प्रसाद जी के पास मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस आया है, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन आया है और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी भी आया है। हरसिमरत कौर बादल अकाली दल से मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज मिली है उनको, और भी कुछ मुख्य जो मंत्रालय हैं जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वो डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर एस जयशंकर को दिया गया है। जैसा कि आप जानते हैं विश्व देशों की जो अभी लोग आए थे यहाँ पर शपथ ग्रहण में, उनमें जयशंकर जी का एक बड़ा जो है वो दारोमदार उनके ऊपर था उनको लाने में, और जो पिछले 5 सालों में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति रही है और जो विदेशों में उन्होंने अपना नाम बनाया और भारत का जो परचम लहराया है और संबंध स्थापित किए हैं, उनमें डॉक्टर एस जयशंकर का बड़ा हाथ है। आईएफएस ऑफिसर रहे हैं और बड़े कमाल के जो हैं वो ऑफिसर हैं और अब मिनिस्टर बन गए हैं, तो उम्मीद है कि वो अच्छे से समझते हैं विदेश मंत्रालय को और बड़ी जिम्मेवारी उनको दी गई है। अर्जुन मुंडा जी को मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दिया गया है और स्मृति जुबिन ईरानी जो कि पहले कपड़ा मंत्रालय देख रही थी वो अब भी कपड़ा मंत्रालय देखेंगी, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल उनको दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ तो उनकी तरक्की हुई है, दो मिनिस्ट्री स्मृति ईरानी अब देखेंगी। डॉक्टर हर्षवर्धन को मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस दिया गया है। पीयूष गोयल जी को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज बरकरार रखी गई है, साथ ही उनको मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और कॉमर्स और इंडस्ट्री भी उनको दे दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम और नेचुरल गैस और स्टील ये धर्मेंद्र प्रधान जी को बड़ी जिम्मेवारी दी गई है, और जो जैसा कि आप जानते हैं उज्ज्वला योजना जो थी जिसमें घर घर गैस पहुंची है तकरीबन 3 करोड़ लोगों के पास, वो उसको प्रधानमंत्री का सपना साकार करने में धर्मेंद्र प्रधान जी का बड़ा हाथ रहा है, इसलिए उनको मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम ये दी गई है ताकि वो उस योजना को और आगे बढ़ा सकें। मुख्तार अब्बास नकवी साहब मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स, जैसे कि उम्मीद थी उनको दी गई है। और गिरिराज सिंह जो कि तथाकथित टुकड़े गैंग का लीडर जो कन्हैया कुमार थे उनको हरा कर पहुँचे हैं भारत की संसद में, मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, डेयरिंग और फिशरीज उनको दी गई है। तो बड़े पोर्टफोलियो हैं और कुछ लोगों को किरण रिजिजू साहब को ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स दी गई है उनको, ऐसे ही हरदीप सिंह पुरी जी को इंडिपेंडेंट चार्ज दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स का। तो ये कुछ मेजर पोर्टफोलियोज हैं जो अभी बांटे गए हैं और बड़े पैमाने पर ये काम अभी शुरू हो गया है, मिनिस्ट्रीज ने काम करना शुरू कर दिया है, फैसला लेना शुरू कर दिया है। कार्यभार संभालते ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ट्विटर पे एक महिला की मदद की है और उन्होंने, मुझे लगता है कि जो सुषमा स्वराज जी का जो कार्यकाल था और उसमें जो उन्होंने अच्छे काम किए हैं, आपसी देशों के साथ संबंध भी उनके अच्छे रहे हैं और बहुत लोगों की हेल्प भी की है, चाहे वो हिंदुस्तान में रह रहे हों चाहे बाहर रह रहे हों, तो मुझे लगता है कि वो जो कार्यकाल अभी जारी रखेंगे। और गृहमंत्री का पद संभालते ही अमित शाह जी से मिलने पहुँचे हैं सत्यपाल मलिक, राज्यपाल जो गवर्नर हैं जम्मू कश्मीर के, और उनसे बड़ी लंबी बातचीत हुई है इस विषय पर। और राजनीतिक घटनाओं के ऊपर हमारे पास संजीव मलिक जी स्टूडियो में उपस्थित हैं। संजीव जी स्वागत है आपका।
अरविंद जी जय श्री राम।
जय श्री राम, जय श्री राम। अच्छा तो जय श्री राम तो फिर ममता बनर्जी पर पहुंच गए आप, ममता बनर्जी पर भी आते हैं ये तो देखिए आप तो क्या कहते हैं, अगर मैं लेफ्टिस्ट की भाषा में बोलूं तो शरारत से शुरू कर रहे हैं।
नहीं, शरारत नहीं शुरू कर रहा हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ममता जी इस रेडियो प्रोग्राम को सुन रही हो और मुझे डर भी लग रहा है साथ साथ ही, कहीं मेरे खिलाफ वारंट ना निकलवा दे कि अगली बार मैं हिंदुस्तान उतरूं तो संजीव मलिक को पकड़ लिया जाए। जय श्री राम बोल रहा था।
10 लाख लोगों को बीजेपी के जो कार्यकर्ता कहते हैं 10 लाख लेटर्स भेजी जाएंगे जिनके ऊपर जय श्री राम लिखा होगा। ममता बनर्जी अपना कॉन्वाय रोकती है, देखिए आप कैसी बात शुरू की है कि गृहमंत्री अमित शाह एक तरफ रह गए, चलो उनके ऊपर बाद में आते हैं, कैसी देखिए कैसी तड़प है कि अपना कॉन्वाय रोकती हैं और ओपन धमकी देते हैं कि अगर आपने जय श्री राम बोला तो चमड़ी उड़वा दूंगे आपकी।
मुझे लगता है जी वो अपना मानसिक संतुलन खो चुकी हैं।
खो चुके हैं, बिल्कुल खो चुके हैं
और उन्हें ये हार जो है बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। उनको एक्चुअली उम्मीद भी नहीं थी, ये उनकी अपेक्षा से बहुत ज्यादा अलग निकला ये सब कुछ, और उन्हें और अपना वो आपा खो चुकी हैं और मुझे लगता है ये बस अब उनका आखिरी दौर चल रहा है।
गुंडागर्दी पूरी की है टीएमसी ने, हालांकि ये कहते हैं कि बीजेपी की गुंडागर्दी चलती है हिंदुस्तान में, लेकिन बंगाल में नहीं चली, जो वोटें गिरी वो तो एक अलग चीज है, शायद ईवीएम वहां की भी खराब थी, ईवीएम खराब कहने वालों की भी मानसिक दशा क्या है?
ये वही लोग हैं जिनकी सरकार जब बनती है
तो ईवीएम ठीक होती है,
वही ईवीएम ठीक होती हैं जी, और जब इनकी सरकार नहीं बनती है तो फिर ये ईवीएम के ऊपर ब्लेम लगाते हैं, लेकिन इस बार कुछ ज्यादा ईवीएम का इनका कहानी चली नहीं है।
देखिए 100 करोड़ लोगों के देश के ऊपर में भी अगर जय श्री राम कहने पे ऊपर चमड़ी उड़वाई जाएगी तो इससे ज्यादा आप कितना टॉलरेंट देश चाहते हैं आप?
बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल।
खैर ममता बनर्जी से वापस आते हैं, तो संजीव जी गृह मंत्री से मिलने पहुंचे हैं, जैसे उन्होंने कार्यभार संभाला है सत्यपाल मलिक को आदेश हुए हैं और वो मिलने पहुंचे हैं अमित शाह से, क्या लगता है गृह मंत्रालय जम्मू कश्मीर से रिलेटेड पहली मीटिंग गवर्नर साहब की हाजिरी, क्या कैसे देखते हैं आप इसको?
ये तो जी जो मोदी गवर्नमेंट 2.0 जो आई है इस बार
जी 2.0
वो बहुत सारी चीजें बदलने के लिए जो आज तक हिंदुस्तान के, जैसा मेरा मानना है और जैसा मुझे लग रहा है
जी,
हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन ये बहुत कुछ बदलने के लिए जो आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ है वो होगा ऐसा मुझे लगता है। और उसी के तहत जो अमित शाह जी को जो होम मिनिस्ट्री जो दी गई है वो उसी के तहत दी गई है कि अब बहुत सारे हार्ड डिसीजन लेने हैं
जी,
और उसके लिए एक अमित शाह जैसा एक आदमी चाहिए जो सेकंड से पहले हार्ड डिसीजन ले ले और उसको इम्प्लीमेंट भी कर दे। तो मुझे लगता है इस बार बहुत सारे हार्ड डिसीजन लिए जाएंगे, धारा 370 जो बहुत सालों से इसके ऊपर काम होना चाहिए था, जो नहीं हुआ है वो होगा।
धारा 370 तो मुझे लगता है राम मंदिर से भी ज्यादा लंबित प्रोग्राम है।
बिल्कुल है जी, और ये जरूरी है इसका इसका होना, और 35A और इसके और माओवादी नक्सलिस्ट का जो जो है उसके ऊपर भी जो है अमित शाह जी मुझे उम्मीद है कि ये लेंगे। और अगर आपको याद हो तो इनके जो चुनावी जो भाषण थे अमित शाह जी के,
जी
उसमें इन्होंने ये सब चीजों को एड्रेस किया है
जी,
कि
जी,
अगर हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इन सब का टेक केयर करेंगे।
हाँ, इन भाषणों में खुल के बोले तो हैं, अब करेंगे क्या करेंगे ये तो अब चलिए आके देखेंगे।
नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है जी कि इसके ऊपर काम होगा, नक्सलिस्ट के ऊपर, 370 के ऊपर, 35A के ऊपर, इवन NRC के ऊपर भी होगा।
अच्छा
जी,
ये तो अगर ये 5 साल में ये कुछ कर जाए इससे रिलेटेड, तो मुझे लगता है कि अगले 5 साल में भी फिर मोदी गवर्नमेंट का आना पक्का है, बीजेपी का आना। मोदी गवर्नमेंट तो मुझे मालूम नहीं है कब तक रहेंगी, कब तक मोदी साहब जब तक लीडर हैं तब तक हम मोदी गवर्नमेंट बोलते हैं, लेकिन बीजेपी का अगर इन चीज़ों पर काम हुआ तो आपको लगता है कि ओवैसी जैसे लोग हैं जिन्होंने पहले ही अभी कुछ हुआ भी नहीं है और वो कहते हैं कि हम हिस्सेदार हैं, हम किराएदार नहीं हैं,
वो भी उनकी मानसिकता को दर्शाता है जी।
किसने तो कुछ कहा नहीं
हिस्सेदार, हम वही कह रहा हूँ ना, वही मानसिकता को दर्शाता है कि आप जिसको कहते हैं ना कि
दरअसल दुकान चलेगी कैसे।
हाँ, कि जबरदस्ती उंगली करना जिसे कहते हैं, ये वो वाली कहानी
है। दरअसल प्रॉब्लम जो है ना वो मैंने कुछ देर पहले पोस्ट भी किया था कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि भारत का जो मुस्लिम समुदाय है वो भी बीजेपी गवर्नमेंट की सपोर्ट में है। उन लोगों को मालूम है कि इतने सालों में इन लोगों ने हमारा कुछ नहीं किया है।
बिल्कुल, अगर आप इस बार का जो चुनाव का आंकड़ा देखते हैं उसके अंदर हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मुस्लिम समुदाय ने जो है वो 15% वोट बीजेपी को गया,
बीजेपी को डाला है,
जो कि बिल्कुल हटके है।
बिल्कुल हटके है। देखिए ये जो तमाचा लगा है ना, ये तमाचा इतना करारा है कि भारत के चुनाव परिणामों के बाद विपक्ष और महागठबंधन के नेताओं को तकरीबन लकवा मार गया है।
बिल्कुल सही कह रहे हैं जी आप, अपनी सीट अमेठी पे हारे हुए राहुल गांधी जी जो है वो बरकरार है कांग्रेस के अध्यक्ष, उन्होंने भी बड़ा बहुत सारा नाटक किया
और हाँ, अभी तो एक्सटेंशन दिया है उन्होंने कि चलो मैं कुछ देर और रुकता हूँ, लेकिन अभी कह रहे हैं कि आप ढूंढिए तब तक। लेकिन तथाकथित धर्मनिरपेक्ष और वामपंथी विचारधाराओं वाले लोग अपने घरों में दुबक कर बैठे हैं, मोदी को और मोदी गवर्नमेंट को और बीजेपी को गालियां देने वाले लोग अपना बयान भी बदल रहे हैं आजकल। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि मेरे दोस्त हैं, और पोल खुल चुकी है भारत की झूठी छवि दिखाने वालों की। भारत के ना सिर्फ आम जनमानस ने भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया है बल्कि मुस्लिम समुदाय ने भी अपना विश्वास जताया है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास। अरुंधति राय, जावेद अख्तर, शबाना आजमी, नसीरुद्दीन शाह, प्रकाश राज, स्वरा भास्कर, अमृत्य सेन, रवीश कुमार INDTV, आरिफा खानम आरिफा का इंडिया, और विनोद दुआ जो वायर के ऊपर बैठते थे, इन लोगों को इस सदमे से बाहर आने में लंबा वक्त लगेगा। आपका संवैधानिक अधिकार है कि आप किसी पार्टी या विचारधारा के विरुद्ध बोल सकते हैं, लेकिन इन लोगों ने देश को और देश की जनता की भावनाओं का सम्मान किया है। खैर, उम्मीद है कि आप जो कश्मीर के बारे में बोल रहे हैं और जो बाकी चीज़ों के ऊपर अमित शाह जी के बारे में आपने बोला, उम्मीद है कि उस चीज़ के ऊपर वो खरे उतरेंगे। राजीव जी, आप इसके ऊपर कुछ टिप्पणी देना चाहेंगे?
पहले तो अरविंद जी, आपको और सभी लिसनर्स को भारत रेडियो की तरफ से नमस्कार।
धन्यवाद धन्यवाद जी, स्वागत है आपका राजीव रामपाल जी। राजीव रामपाल जी, जैसा कि आप जानते हैं, ब्लू ओशन इमिग्रेशन से जुड़े हुए हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में अपनी एक अलग राय रखते हैं, तो हमने आज इनकी उपस्थिति का फ़ायदा उठाया है और दो चार कमेंट इनसे भी लेंगे बीच बीच में।
मैं मलिक साहब जी की जो भी बात है ये सुन रहा था कि अमित शाह जी को उन्होंने पार्टी प्रेजिडेंट से जो है होम मिनिस्टर बना दिया है, तो मैं इनसे जानना चाहूँगा कि इवन दो जो इनको सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो क्या ये जो आप 370 की बात कर रहे हैं, जो J&K में जो सबसे ज़्यादा जो इनके अगेंस्ट खड़े होने वाले हैं महबूबा मुफ्ती, जो हार भी गई हैं बुरी तरह से, तो वो कैसे रिएक्ट करेंगी?
महबूबा जी का भी वही हाल होना है जी जो ममता दीदी का है।
ममता दीदी का तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले सोल्यूशन बताया था कि जब वो दूसरे भारतीय जनता पार्टी वाले जय श्री राम बोले तो ममता और उसकी टीम भी अगर जय श्री राम बोले तो मसला खत्म हो जाता
है। मसला खत्म हो जाता है, पर मसला खत्म करने वाले लोगों में है नहीं ना। वो कहते हैं जो जो भारत में हो रहा है वो बंगाल में नहीं होगा। और उधर ओवैसी साहब कह रहे हैं कि 300 सीट जीतकर हिंदुस्तान पर मनमानी नहीं कर सकते मोदी और मोदी गवर्नमेंट। और मोदी मनमानी तो की नहीं है, मनमानी करनी होती तो आप ये कहने लायक थोड़ा रहते हैं। सेक्युलर कंट्री में आप हैं, वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट में आप प्रैक्टिस करते हैं, भारत के संविधान को आम आदमी से ज़्यादा समझते हैं। और देखिए उसके बावजूद बिना किसी बात के उसके आप जो है वो डिवीजन की राजनीति कर रहे हैं वहाँ पर।
जब आप जनता के आदेश को जब आप नहीं सुनते हो, ये जनता का आदेश है जो मोदी जी को इतनी सारी सीटें मिली हैं और उसको भी अगर आप दरकिनार कर रहे हो तो मुझे तो इनकी मानसिकता के ऊपर हंसी आती है और दया भी आती है।
मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती से अब बीजेपी की दूरियां तो पहले हो गई थी काफ़ी, लेकिन मुझे लगता है इनसे अजनबी बने रहें तो अच्छा है, दोबारा वो गलती ना करें। तो इसी बात के ऊपर एक खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं महेंद्र कपूर की आवाज़ में, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों।
चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, देखो गलत अंदाज नजरों से न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए, मेरी बातों में न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। Yes. बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों।
वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना ना हो मुमकिन, उसे खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। क्या खूबसूरत लिखा है शायर लुधियानवी ने। आइए बात करते हैं कुछ विदेशों में बसे हुए कुछ भारत विरोधी लोगों ने जो नारे लगाए हैं, और अपने आप को तथा कथित पत्रकार और मीडिया कर्मी समझने वाले लोगों ने भी कोई कसर उठा नहीं रखी। पिछले कई महीनों से भारत के विरुद्ध, हिंदुओं और हिंदू धर्म के विरुद्ध अत्यधिक नीच भाषा का उपयोग किया गया। ये सब लोग भूल गए थे कि भारत में शांतिपूर्ण ढंग से रहने वाले मुस्लिम और सिख भाइयों को मूर्ख बनाना इनके बस की बात नहीं है। मुस्लिमों ने भाजपा का साथ दिया और सिख भाइयों ने आम आदमी पार्टी को उसकी औकात पंजाब में बता दी। हैरानी है कि आप अपने देश से आते हैं और आप भूल जाते हैं कि उस देश की मिट्टी ने आपको क्या सिखाया है, आपके गुरुओं ने आपको क्या सिखाया है, गंगा जमुनी तहजीब ने आपको क्या सिखाया है। आप यहाँ आते हैं और बेहुदा बातचीत करते हैं जिसका कोई सेंस नहीं है। 130 करोड़ लोगों के मुल्क के ऊपर एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस के ऊपर एक क्वेश्चन मार्क उठाते हैं और यहाँ से पैसे भेजते हैं, नुकसान करते हैं अपना, अपनी कौम का, अपने देश का, और फिर उसको बड़ी गौरव से आप उसको यहाँ पे क्लेम करते हैं कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। मुझे इनकी अकल पर तरस आता है। इतनी अत्यधिक नीच भाषा का संजीव जी प्रयोग किया गया है पिछले एक डेढ़ साल में। अगर आपने मीडिया सुना हो, उनको ये लग रहा था कि हम यहाँ से बैठ कर 130 करोड़, जो 5-7 लाख यहाँ पे, 5-7 लाख भी नहीं बोलूँगा, जो 20-50-100 मूर्ख हैं, उन लोगों को ये लगता था कि हम रेडियो, टीवी और अखबारों पर यहाँ लिख के और हिंदुस्तान में कुछ पैसे भेज के 130 करोड़ के लोगों के मुल्क के ऊपर अपनी छाप छोड़ेंगे और उनको यहाँ से चलाने की कोशिश करेंगे। वो भूल गए कि वो कंट्री एक अलग मिट्टी का बना हुआ है। आप लोग बाहर आ गए हैं उसका ये मतलब नहीं है कि उस कंट्री की जो नॉर्म्स है, उस कंट्री को जो चलाने का ढंग है, जो लोगों में आपसी संभाव है, वो ख़त्म हो जाएगा। आप एक कोई बातचीत उठाते हैं, एक कोई लिंचिंग का मुद्दा उठाते हैं, एक किसी का कोई दंगा उठाते हैं और उसको लेकर पूरे विश्व में भारत की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या, थप्पड़ बहुत ज़ोर से लगा, आवाज़ बहुत ज़ोर से आई, शायद रोने की आवाज़ कम आ रही है, धीरे धीरे शायद उम्मीद है इनकी भाषा संभलेगी, इनकी सोच संभलेगी और ये जानेंगे कि भारत का इस समय विश्व में क्या स्थान है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू से लेके, राष्ट्रपति पुतिन से लेके, ट्रंप से लेकर, फ्रांस के राष्ट्रपति से लेके, जापान के राष्ट्रपति शिंजो आबे से लेके, चाइना के राष्ट्रपति से लेके, और यहाँ तक कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी उम्मीद जताई है कि भारत में मोदी गवर्नमेंट आने के बाद हमारे संबंध और प्रखर होंगे। यहाँ के लोगों को जो मीडिया में स्पेशली हैं, जो सोचते हैं कि हम जो है वो कितना एनालिसिस करके बैठे हैं भारत का, संजीव जी कब अकल आएगी?
मैं तो यही कहूंगा जी कि ये मानसिक दिवालियापन का एक जीता जागता उदाहरण है
जी,
और ये वहाँ की जनता ने हिंदुस्तान की इतना बड़ा संदेश दिया है, अगर आप उसको भी नकार देते हैं, उसको भी नहीं सुनते हैं, तो फिर इसका तो कोई इलाज नहीं है जी।
नुकसान आपका अपना है
बिल्कुल।
आप सोचें भारत का कुछ बिगाड़ पाएंगे? आज की डेट में वो सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जो है वो भारत विश्व की चौथी ताकत है, और उम्मीद है कि इन 5 सालों में वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी अपनी जगह बना पाएगी। और अगर आप सोचते हैं कि यहाँ से विश्व के देशों की मजबूरी है कि भारत के साथ हो, इतनी बड़ी मार्केट है, भारत के साथ अपने संबंध ठीक बनाकर रखें, और जिस संस्कृति ने, जिस देश ने पूरे विश्व को सर्वधर्म धर्म संभाव और वसुधैव कुटुंबकम जैसा संदेश दिया हो, वो लोग आज हमें ह्यूमैनिटी और इक्वालिटी का पाठ पढ़ाते हैं तो बड़ी हैरानी होती है।
बिल्कुल सही कहा जी आपने।
खैर संजीव जी, आप ममता बनर्जी के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? तो अब जय श्री राम बोलना बंद करें बंगाल में।
अब मैं इसमें अभी हमारी पूरी बात हुई है इसके बारे में तो बिल्कुल बंद नहीं होगा, जय श्री राम बोलना जारी रहेगा और जिस तरीके से वो व्यवहार कर रही है उससे उनका मकसद ही ये है कि उस चीज को उकसाया जाए और किसी तरीके से वहां पे दंगे कराए जाएं और फिर उस पे ब्लेम जो है वो मोदी जी और मोदी जी की गवर्नमेंट के ऊपर लगाया जाए।
जी 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 बिल्कुल सही कह रही हैं। लोकसभा चुनावों के बाद जो तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को कड़ा झटका लगा है और उसके ऊपर जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी वायरल काफी हो रहा है जिसमें वो जय श्री राम का नारा लगाने वालों पर भड़कती दिखाई दे रही है और डायलॉग तो मैंने बताया कि चमड़ी उधड़वा दूंगी सामने आओ मेरे, तो
सात लोग गिरफ्तार भी हुए हैं।
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी अब ममता बनर्जी के जख्मों पर नमक छिड़कने की तैयारी में है। बीजेपी ने ममता को जय श्री राम लिखे 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजने का निर्णय लिया है। भाजपा के नवनिर्वाचित सांसद अर्जुन सिंह का कहना है कि सीएम के आवास पर 10 लाख पोस्ट कार्ड भेजे जाएंगे जिस पर जय श्री राम का नारा लिखा होगा। अर्जुन सिंह तृणमूल कांग्रेस के विधायक रह चुके हैं, वो चुनावों से पहले ही बीजेपी में शामिल हो गए थे। अर्जुन सिंह ने यह बात बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा किए गए लाठीचार्ज के बाद कही। कार्यकर्ता उस समय जय श्री राम के नारे लगा रहे थे उस स्थान पर जहां पर टीएमसी के नेता बैठक कर रहे थे। हैरानी है राजीव जी, आप कुछ कहने लगे थे।
हाँ जी अरविंद जी, मैं ये बोलने लगा था कि अभी कल की शायद बात है कि राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि वो जो उनके पुराने जो स्टालवर्ट्स थे जिनमें से ममता बनर्जी इज वन एंड शरद पवार जी भी हैं, तो इनके साथ दोबारा मीटिंग की जाए और इनको साथ में लेके आए क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि उनको सिर्फ 52 सीटें मिली हैं
जी।
तो अब वो चाहते हैं कि दे कैन नॉट डिफीट भारतीय जनता पार्टी, उनके पास ये एक विकल्प है। तो आपको क्या लगता है?
देखिए इकट्ठा आने का अभी तो इकट्ठा आने से अभी तो कुछ होगा नहीं, अभी तक तो उनके अध्यक्ष पद का ही जो है वो डिसीजन पेंडिंग है, तो जब तक वो अध्यक्ष पद वाले उसके ऊपर जो सिनेरियो है वो क्लियर नहीं हो जाता, धुंध छट नहीं जाती, तब तक तो उनकी बात भी जो किस किस आदेश से मानेंगे वो लोग। और इकट्ठा आने के सिवा इस समय चारा भी नहीं है। कांग्रेस ने अगर अच्छा परफॉर्म किया होता, 100 या 120 से ऊपर सीटें आई होती, फिर भी जो दूसरे दल हैं, घटक दल हैं, वो उस लोग सोचते कि कांग्रेस के साथ मिलकर कुछ कार्यक्रम बनाया जाए, लेकिन मुझे लगता है आने वाले समय में 5 सालों तक तो कुछ भी मुझे होता दिखाई नहीं दे रहा। 5 साल
की तो बात ही खत्म है, अगले उसके बाद की 24 के बाद की बात हो रही है, 5 साल तो कुछ नहीं।
24 के लिए कांग्रेस, मुझे लगता है कि कांग्रेस अपनी रणनीति जो है वो उसमें आमूल चूल परिवर्तन इन लोगों को करना पड़ेगा और अगर ये रणनीति और पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक पॉलिसी चेंज होती है कांग्रेस की, उस समय बाकी दल उसके साथ अपनी जो पार्टी की जो विचारधारा है उसके साथ वो मेल बिठा पाते हैं नहीं बिठा पाते, ये बात की बात है। मुझे लगता है कि कांग्रेस में भी कुछ बड़ा परिवर्तन होने वाला है और स्ट्रेटजिक लेवल पर होना चाहिए भी, बहुत पुरानी पार्टी है और एक विपक्ष का होना मैं खुद समझता हूँ।
बिल्कुल, ये जो आपने विपक्ष की बात की ना
जी,
दिस इज वन ऑफ द मेजर रीजन कि मोदी ने इतना कुछ किया 5 सालों में जो देश के लिए अच्छा भी, और कुछ उनसे गलतियां होने के बावजूद भी लोगों ने उनको फिर मौका दिया कि नहीं यू आर स्टिल द बेस्ट बिकॉज ऑफ द वीकर ऑपोजिशन।
जी जी जी, नहीं देखिए मैं एक चीज हमेशा से मानता हूं कि आप कुछ करेंगे, कोई काम करेंगे तो गलती
हो,
खाली बैठे रहेंगे तो फिर गलती क्या होनी है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कि अभी जो है वो ममता जी के चेहरे पे सभी की नजर है, राहुल गांधी जी की भी, और मुझे लगता है कि जो बंगाल में बीजेपी की इकाई है उनकी भी। आइए इस नजर से मिलता जुलता एक गीत सुनते हैं।
हाँ जी।
तेरे चेहरे से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें।
क्या देखे
तुझे मिले के भी तुझे मिले के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखे नजारे हम क्या देखे नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या देखें तुझे मिले के भी तुझे मिले के भी प्यास नहीं घटती नजारे हम क्या देखें नजारे हम क्या
दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम वाज स्पॉन्सर्ड बाय टीम जीटीए रियलिटी जिनके पास डेनियल का एक वन बेडरूम प्लस वन डेन कॉन्डो अवेलेबल है विद टू वॉशरूम्स एंड ओपन बालकोनी क्लोज टू क्रेडिट वैली हॉस्पिटल एंड द प्लाजा विच इज ऑन एग्लिंगटन एंड एरन मिल्स फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज कॉल 6476400555 ओवर टू अरविंद
टीम जीटी रियलिटी को आप 647-640-0555 पर कॉल कर सकते हैं एक्सपीरियंस्ड और मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के लिए टीम जीटी रियलिटी आपकी सेवा में हमेशा उपस्थित है पारस चोपड़ा मॉर्गेज इंटेलिजेंस में काम करते हैं और 647-680-1284 पर आप इनसे कमर्शियल और रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस के लिए बात कर सकते हैं और स्ट्रेस टेस्ट होने के बावजूद आपको अच्छे रेट्स के ऊपर कमर्शियल और रेजिडेंशियल मॉर्गेजेस दिलवा सकते हैं पारस चोपड़ा 647-680-1284 647-680-1284 आपके ऑटो होम और कमर्शियल इंश्योरेंस के लिए वन स्टॉप सोर्स हैं कोमल भारद्वाज आप उन्हें 416-262-0414 पर कॉल कर सकते हैं ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए भी संपर्क स्थापित कीजिए अच्छी सलाह और अच्छे कोट के लिए अभी फ़ोन उठाइए और बात कीजिए और एक कम्पिटिटिव कोट लीजिए कोमल भारद्वाज 416-262-0414 DPJN CPA CGA 30 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है और 13 साल से ज़्यादा की प्रैक्टिस कनाडा में फुल टाइम से कर रहे हैं एक्सपर्ट हैं बिजनेस लोन्स लाइन ऑफ क्रेडिट्स कमर्शियल मॉर्गेजेस बिजनेस कंसल्टिंग एंड एडवाइजरी में कमर्शियल कॉरपोरेट पर्सनल एंड बिजनेस टैक्सेस में कंपनी कॉरपोरेशन बिजनेस रजिस्ट्रेशन CRA ऑडिट्स HST पेरोल मैटर्स और अकाउंटिंग के लिए आप उन्हें 416-305-0080 पर कॉल कर सकते हैं मिस्टर DP Jain CPA CGA आप इन्हें 416-305-0080 पर अपनी अकाउंटिंग की नीड्स के लिए बात कर सकते हैं संजीव जी
धन्यवाद अरविंद जी आज हम कुछ सुपर वीजा इंश्योरेंस के ऊपर कुछ थोड़ा प्रकाश डालेंगे कि जिस समय आप सुपर वीजा इंश्योरेंस खरीदते हैं उस समय किन किन चीजों का ध्यान देना चाहिए तो सुपर वीजा इंश्योरेंस खरीदते समय जब आप मंथली प्लान ले रहे हैं तो उसमें मेक श्योर करें कि ऐसा तो नहीं है कि आप ऐसे मंथली प्लान में तो नहीं जा रहे हैं कि सपोज दो महीने के बाद उसके ऊपर क्लेम आ गया और अगले महीने तीसरे महीने के बाद आपके पेरेंट्स वापस चले गए तो बाकी के बचे हुए 9 महीने जो हैं उसका भी पेमेंट आपको करना पड़े तो ये आपको ध्यान देना है उसके बाद जब आप डिडक्टेबल चूज कर रहे हैं सपोज आपने $500 का डिडक्टेबल चूज किया तो ऐसा तो आप सुपर वीजा इंश्योरेंस नहीं खरीद रहे हैं जिसके अंदर आपका डिडक्टेबल जो है वो पर क्लेम है तो पर क्लेम का मतलब अगर आपके सपोज करें साल के अंदर 4 क्लेम आ गए आपकी पॉलिसी के ऊपर और $500 का आपने डिडक्टेबल चूज किया है तो आपने $2000 अपनी पॉकेट से दे दिए
जी
जबकि आपको ऐसी पॉलिसी चूज करनी चाहिए जिसके अंदर पर पॉलिसी वन टाइम ओनली आपका डिडक्टेबल कटता है, यानी कि सिर्फ चाहे 4 क्लेम हो चाहे 40 क्लेम हो, आपको सिर्फ और सिर्फ 500 का अगर आपने डिडक्टेबल चूज किया है तो 500 ही डॉलर आपको देने हैं। उसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको लोग अक्सर दरकिनार कर जाते हैं, जो है फॉलो अप विजिट्स। अगर सपोज करिए कि कोई क्लेम आ जाता है, आप इमरजेंसी में जाते हैं या कुछ डॉक्टर के पास विजिट करते हैं और डॉक्टर उसको बोलता है कि इसके बाद जो है आप 2 हफ्ते के बाद आइए या 2-3 विजिट और चाहिए हमें, तो बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ 1 फॉलो अप विजिट या 3 फॉलो अप विजिट को ही कवर करती हैं। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी हैं जो नंबर ऑफ डेज के ऊपर कैप लगा रखी है, यानी कि 14 दिन के बाद अगर कोई फॉलो अप विजिट होती है तो वी आर नॉट गोइंग टू टेक केयर ऑफ दैट, आप अपने आप उसको झेलें। हालांकि आपकी इंश्योरेंस $1,00,000 की है
जी,
लेकिन उस इंश्योरेंस का फायदा क्या है अगर आप फॉलो अप विजिट ही आपको कवर नहीं करती है। बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसी है जिन्होंने सिर्फ $3,000 या $5,000 के ऊपर फॉलो अप विजिट के ऊपर उन्होंने एक कैप लगा रखी
है।
तो मेक श्योर करें कि आप जो पॉलिसी खरीद रहे हैं उसके ऊपर किसी भी तरह की कोई फॉलो अप विजिट के ऊपर कोई कैप ना हो, तभी आपको फायदा है। अदरवाइज आपने $1,00,000 की इंश्योरेंस खरीदी और आपको कहीं इमरजेंसी आ गई, उसका फॉलोअप ही नहीं हो सकता, तो फिर फायदा क्या हुआ $1,00,000?
जी। देखिए, इतनी मेजर बात है, हम इंश्योरेंस इस कंट्री में इतना मानते हैं, इतना जरूरी है, और कितनी चीजें हैं इंश्योरेंस के बारे में पुराने रहने वाले लोगों को मालूम भी नहीं है। तो संजीव मलिक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप कुछ और ऐड करना चाहते हैं इसमें?
जी नहीं, बस लिस्ट तो बहुत लंबी है, फिर हम अगले हफ्ते बात करेंगे, इस सिलसिले को जारी रखेंगे।
जानकारी हमारे
किसी भी तरह की सुपर वीजा इंश्योरेंस के लिए आप मुझे यानी संजीव मलिक को कॉल कर सकते हैं। नंबर इज 6478833445। आई रिपीट, 6478834445। 4445। थैंक यू,
धन्यवाद संजीव जी, आपसे जानकारी इस विषय पर लेते रहेंगे जो कि हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके काम आए। इस कंट्री में बिना इंश्योरेंस के तो कुछ भी नहीं है, कम से कम ये जानकारी उनके किसी काम आएगी। पाकिस्तान से खबर लेते हैं। हम सबको मालूम है कि पिछले हफ्ते ऐतिहासिक गुरु नानक महल में तोड़फोड़ की गई है, शरारती तत्वों ने कुछ कीमती सामान उठाकर बेच दिया। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत स्थित ऐतिहासिक गुरु नानक महल के एक बड़े हिस्से में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक कुछ शरारती तत्वों ने महल में तोड़फोड़ की और बाद में महल से कीमती सामान भी उठाकर ले गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक महल में लगे महंगे खिड़की और दरवाजों तक को बेच दिया गया या तोड़ दिया गया। फिलहाल आसपास के इलाकों के लोगों ने प्रधानमंत्री इमरान खान से तोड़फोड़ के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। पाकिस्तान के डॉन अखबार की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार पंजाब प्रांत में कुछ स्थानीय लोगों ने औकाफ विभाग के अधिकारियों की कथित मौन सहमति से सदियों पुराने गुरु नानक महल के एक बड़े हिस्से को तोड़ दिया और उसकी कीमती खिड़कियां और दरवाजे भी बेच दिए। बता दिया जाए कि इस 4 मंजिला इमारत की दीवारों पर सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक के अलावा हिंदू शासकों और राजकुमारों की तस्वीरें लगी हुई थी। बाबा गुरु नानक महल 400 साल से ज्यादा पहले बनाया गया था और यहाँ लाखों की संख्या में भारत और विदेश से सिख तीर्थयात्री आते भी रहते थे। यह महल लाहौर से सिर्फ 100 किलोमीटर दूर नरोवाल शहर में स्थित है और इसमें 16 कमरे और हर कमरे में 3-3 दरवाजे लगे हुए हैं और इसके अलावा हर कमरे में 4 रोशनदान भी लगे हैं। आसपास के जो लोगों हैं, लोगों ने उन्हें बताया है कि औकाफ विभाग जो इन सब की देखभाल करता है उनकी मौन सहमति से लोगों ने ये चीज़ तोड़ी। जो तोड़फोड़ तो देखिए हमारे देशों में हिंदुस्तान पाकिस्तान बांग्लादेश में कॉमन बात है, दंगा भी कॉमन बात है, लेकिन जो डिपार्टमेंट है जो अगर उनकी भी मौन सहमति रही है उसको तोड़ने में, वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है। एक तरफ तो हम करतारपुर लांगा खोलने की बात कर रहे हैं और पाकिस्तान में उसमें बड़ी जो है वो सिखों को बहलाने में उसमें बड़ी कसर भी नहीं छोड़ी और बहुत कुछ किया है, हालांकि मीटिंग्स चल रही हैं और लेकिन जो ऑलरेडी उनके पास जो मॉन्यूमेंट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट जगहें हैं सिख धर्म से रिलेटेड, अगर वही संभाल कर नहीं रखेंगे तो एक ज्वाइंट चीज़ को ओपन करने का क्या लाभ होगा। मुझे ये थोड़ा, संजीव जी आप कुछ कहना चाहेंगे इसके ऊपर?
बस बिल्कुल सही कहा जी आपने। अगर डिपार्टमेंट की इसके अंदर मौन रखा हुआ है इसके ऊपर, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है सरकार के ऊपर, और मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इसमें कुछ ना कुछ हस्तक्षेप करेगी और इसके ऊपर ध्यान देगी।
आइए कुछ रिकॉर्डेड कमर्शियल लेते हैं और लौट कर आते हैं कुछ चर्चा के ऊपर।
यार पिछले 5 साल से बिजनेस जहाँ था वही खड़ा है,
तो ग्रो क्यों नहीं कर रहा है?
ग्रो करने के लिए पैसे चाहिए, और पैसे तब आएंगे जब ग्रोथ होगी। समझ नहीं आती कहाँ जाऊँ।
बैंक से लोन लो और प्रोग्रेस करो।
बैंक लोन? बैंक तो मुझे लाइन ऑफ क्रेडिट भी नहीं दे रहा, सिर्फ पेपर वर्क और भाग दो।
फिर टाइम वेस्ट मत करो बॉस, सीधा कैनेडा वाइट फाइनेंशियल ग्रुप के प्रमोद गोयल से मिलो और समझो हो गई प्रॉब्लम सॉल्व।
पर यार,
पर वर्क कुछ नहीं, काम करते हैं चुटकियों में, फीस भी रीजनेबल, लेंगे भी काम होने के बाद। और कुछ
यार, ये थोड़ी देर जरा मेरा काम संभालो, मैं गोयल साहब से मिलकर आता हूँ।
For all kinds of business and commercial loans, call Canada Wide Financial Group 647-699-888 647-699-888
5000 पुराने हिंदी गानों का एक नया तोहफा। Presenting Sarigama Karwa Premium with mobile app support and AM FM radio.
आने वाला पल जाने वाला है।
By contact Madha Malwa Doaba at 905-799-9400 and India Sajavat and Pooja Hut at 905-458-6808.
Canada आए हुए अरसा हो गया, लेकिन अपनी फैमिली को बुलाने की हसरत अभी तक अधूरी है। ब्लू ओशियन इमिग्रेशन, जो कि स्पेशलाइज करते हैं एक्सप्रेस एंट्री, फेडरल स्किल्ड एंड ट्रेड वर्कर, स्टडी वर्क परमिट, स्पाउसल स्पॉन्सरशिप, सुपर वीजा, विजिटर वीजा, पेरेंटल स्पॉन्सरशिप और अपील्स में। लोकेटेड एट 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव, यूनिट 211, मिसिसागा। कम टू योर ड्रीम नेशन थ्रू ब्लू ओशियन इमिग्रेशन। कॉन्टैक्ट राजीव रामपा फ्रॉम ब्लू ओशियन इमिग्रेशन, कॉल 416-500-8036।
सात समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गई। राजीव जी से मिलने के लिए आपको सात समुंदर पार जाने की जरूरत नहीं है, मिसिसागा में ही ऑफिस है और आप 7895 ट्रेनमेयर ड्राइव, यूनिट नंबर 211 पर आप इनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं। और आज हमारे स्टूडियो में भी उपस्थित हैं, तो इनसे कुछ जानकारी लेते हैं इमिग्रेशन से संबंधित। राजीव जी।
हाँ जी अरविंद जी, मैं बताना चाहूँगा कि इस साल जो लोगों ने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को अप्लाई किया था, जिनको अपना जनवरी में लास्ट इनविटेशन आ गया था, तो उनको अब बेसिकली देवर पिक्ड अप इन दैट पॉइंट ऑफ टाइम, और 25 अप्रैल को उनको लेटर्स आई थी कि फुल एप्लीकेशन सबमिट करवाएं।
अच्छा,
तो जो नॉर्मल केसेस हैं वो तो देखे फॉर्म भरने तो एक अलग बात है
जी,
लेकिन हर सिनेरियो डिफरेंट होता है
जी।
तो देयर आर मेनी इंस्टेंसेस जहां पे ड्यू टू डोमेस्टिक रीजंस हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन हो गई है, उनके ऊपर केसेस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस है, या मेडिकल कंडीशन है पेरेंटल की बैक होम, तो वो उनको कैसे एड्रेस किया जाए, हाउ टू हैंडल दोज कॉम्प्लिकेटेड केसेस, या किसी के इनकम इश्यूज हैं कि वो इनकम मेंटेन नहीं कर पा रहे या शॉर्टफॉल है, सो उसके लिए मैं उनको बोलूँगा कि दे शुड कॉन्टेक्ट अस एट 416-500-8036। Alternatively, we can be reached at 905-696-8008 at Blue Ocean Immigration, and हम उनकी हर तरह से हेल्प करेंगे। और मैं लास्ट एक बात और भी बोलना चाहूंगा कि ये सब जो लोग हैं, दे शुड मेक श्योर कि दे डील विद अ रेगुलेटेड कंसल्टेंट ऑफ इमिग्रेशन, जो कनाडा के कंसल्टेंट है, ना कि जो गोस्ट कंसल्टेंट है उनके हाथे नहीं चढ़े।
बिल्कुल, ये बड़ी समस्या है हमारी कम्युनिटी में, खास करके राजीव जी से आप 416-500-8036 पर संपर्क स्थापित कीजिए और अपनी जितनी भी इमिग्रेशन की ज़रूरतें हैं उनके ऊपर आप इनसे जो है वो सलाह ले सकते हैं, और अपने जो भी काम है इमिग्रेशन से रिलेटेड वो बड़े लीगल ढंग से आप करें तो अच्छा रहेगा। 416-500-8036 ब्लू ओशियन इमिग्रेशन, राजीव रामपाल जी। धन्यवाद राजीव जी आपका स्टूडियो में आने के लिए। हमारा प्रोग्राम समाप्ति की ओर अग्रसर है और आखिरी गीत आपकी सेवा में उपस्थित है।
और इसके साथ ही हम प्रोग्राम ख़त्म करने की आपसे इजाज़त चाहते हैं। आशा है आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। रियल एस्टेट से संबंधित किसी भी ज़रूरत के लिए आप 6476400555 पर कॉल कर सकते हैं। टीम GTA रियलिटी आपकी सेवा में उपस्थित है। अगले कार्यक्रम तक के लिए अपने दोस्त अरविंद भारद्वाज को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।
Expressed on the preceding program may not necessarily be those of the owner or management of WTOR radio station.
Business run karna mushkil hai. So printer ki problem se ise aur mushkil kyun banaye? Faster aur smarter print karein apne naye HP OfficeJet Pro printer ke saath. Aur subscribe karein HP Instant Ink, Canada's only ink subscription service, jo ink aapke ghar pahunchaye khatam hone se pehle. आज ही खरीदें न्यू HP ऑफिस जेट प्रो प्रिंटर और सब्सक्राइब करें HP इंस्टेंट इंक स्टार्टिंग एट $399 a month. विजिट hp.ca या अपने नजदीकी HP रिटेलर।
Open invitation. Grand opening of Complete Home Furniture Appliances Stores in Brampton on June 6th. Special giveaways and loads of grand opening deals. Pay no taxes on everything in stores on June 6th. Complete Home Furniture and Appliances Stores. 547 Steeles Avenue East at the corner of Steeles and Kennedy. 905-244-4663 905-244-4663.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਜੂਨ 1984 ਦੇ ਸਮੂਹ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦਿਨ ਐਤਵਾਰ 9 ਜੂਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ 905-799-2682 ਜਾਂ 905-790-1415 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਸੇਲ 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 ਵਿਨਾਇਕ ਫਰਨੀਚਰ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕਹਾ 2915 ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਚਰਚ ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਮੇਜਰ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾ 15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸਟੋਰ ਜਹਾਂ ਪਰ ਬੈਡਰੂਮ ਸੈਟ ਮਿਲਤਾ ਹੈ $499 ਕਾਫੀ ਟੇਬਲ $199 ਮੈਟਰੈਸ $99 ਓਨਲੀ ਫਰਨੀਚਰ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੋ ਪਹੁੰਚਿਏ 2915 ਅਰਜੈਂਟੀਆ ਰੋਡ ਇਨ ਮਿਸਿਸਾਗਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ 905-858-2667
टेली टाइम इलेक्ट्रॉनिक्स LEDs और होम अप्लायंसेस की हॉटेस्ट और ब्रांडेड रेंज के साथ 0% फाइनेंस गारंटी और लोएस्ट प्राइसेस और फ्री डिलीवरी इन GTA। तो इंतजार कैसा, अभी विजिट करें टेली टाइम ब्रैम्पटन 280 रदरफोर्ड रोड।